पिछले कई रविवारों से हम भगवान के पवित्र नाम के प्रति जो अपराध होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते आए हैं। हम ये सुन चुके हैं कि भगवान का नाम लेना ही ये इस कलयुग का धर्म है। भगवान का नाम लेने से सारी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो जाती है। भगवत प्रेम हमें मिल जाता है। नहीं होता है। भगवान का नाम लेने से बहुत ही जल्दी हम भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि जो साधक होते हैं हम सब कृष्ण प्रेम को इतने आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए हमें, क्योंकि पद्धति तो बहुत आसान है केवल भगवान का नाम लेना। तो फिर भी अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दोष हमारे साधना में है। तो वो दोष क्या है? वो दोष है कि हम भगवान के नाम के प्रति हम अपराध करते हैं। हम ऐसे कोई गलतियां करते हैं हमारी साधना में या हमारे सोच विचार में, हमारे व्यवहार में, जिससे कि हम भगवान के नाम के प्रति अपराध करते हैं। इनको नाम अपराध कहते हैं। और ऐसे 10 नाम अपराध हैं। इनमें से 2 नाम अपराधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला नाम अपराध कौन सा है? भगवान के भक्तों की निंदा करना, सताम निंदा। जब हम भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं तो फिर शुद्ध नाम हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाम जप और कीर्तन के मार्ग में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत भयंकर अपराध है, वैष्णव अपराध, जिससे कि हमारी भक्ति मार्ग में अड़चन बहुत आ सकती है, बल्कि आएगी। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहता है उसे इन 10 नाम अपराधों से बचना तो चाहिए, लेकिन खास करके इस पहले नाम अपराध, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इसके बारे में पिछले रविवार काफी विस्तार में चर्चा हुई थी। दूसरा नाम अपराध क्या है? देवी देवताओं को या उनके नाम को भगवान से या भगवान के नाम से भिन्न समझना, स्वतंत्र समझना, ये सोचना कि देवी देवता या कोई स्वतंत्र शक्तिमान व्यक्ति है, ये भूलते हुए कि जितने भी सारे देवी देवता हैं, जैसे गणेश हैं, दुर्गा हैं, शिवजी हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, वायु, वरुण, ये केवल भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके विभूति हैं। विभूति मतलब उनके विस्तारित शक्तियां, उनको शक्ति प्रदान करने वाले हैं श्री कृष्ण। तो जब इन विभूतियों को हम स्वतंत्र शक्तिमान समझते हैं तो फिर ये भी एक नाम अपराध होता है, जिससे कि हम भगवान के नाम के जप और कीर्तन के मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हम ये भी देख चुके हैं कि दूसरे नाम अपराध का मतलब ये भी है कि भगवान विष्णु या कृष्ण को परम नहीं मानना, या तो फिर भगवान कृष्ण या विष्णु को अपने नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि से भिन्न समझना, जबकि ये सारे भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान से अभिन्न है, खास करके भगवान का नाम। इसलिए जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, वो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इन दो अपराधों के बारे में काफी विस्तार में चर्चा हो चुकी है। आज से तीसरे नाम अपराध के बारे में हम चर्चा करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा नाम अपराध कौन सा है? गुरुर अवज्ञा। तो गुरु जो हमें आज्ञा देते हैं उसका पालन नहीं करना। वैसे गुरु है कौन? गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से भगवान की वाणी, भगवान की कृपा हम तक पहुंच सकती है। भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते भगवान की तरह ही उनका सम्मान किया जाता है। गुरु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिस तरह से देवताओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस सारे सृष्टि में जो भी कुछ है वो सब भगवान के ऊपर आधारित है। तो गुरु वो भी भगवान के अंश होने के नाते भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान की ओर हमें कैसे जाना चाहिए, भगवत प्रेम, बल्कि भगवान को कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए, ये हमें गुरु सिखलाते हैं। इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, या गुरुजनों को साधारण व्यक्ति समझते हैं, या उनको भौतिक दृष्टि से देखते हैं, या केवल उनके बाहरी भौतिक दोष देखते हैं लेकिन उनके अंदर जो दिव्य गुण हैं वो नहीं देखते हैं, तो ये उनके प्रति एक अपराध हो जाता है। और ये भी नाम अपराध होने के नाते हम हरि नाम में रुचि खो बैठते हैं, फिर हमारा जप, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति वो घिसी पिटी सी लगती है। हमको इसमें रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो इसलिए हमने, अगर बड़े सावधानी से वैष्णवों के साथ में, गुरु के साथ में हमने बर्ताव किया, तो फिर हमारा भक्ति का जीवन बड़ा आनंद से बीतेगा। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कर आख्या आर न करी है मन आशा, कि गुरु के वचनों को हमारा प्राण धन मानकर जब हम जीवन में चलेंगे आगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। बाहर दुनिया में सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं और सोचते हैं कि ऐसे स्वतंत्र रहने से हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो तब आता है जब हम हमारी स्वतंत्रता को त्याग कर हम गुरुजनों के शरण में आते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में हमें दिव्य गुलामी सिखाई जाती है। गुलाम होना किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई बोलेगा तुमको गुलाम होना है, बोलेगा अरे नहीं, मेरे को बहुत सारे गुलाम चाहिए, लेकिन मैं गुलाम नहीं होना चाहता। लेकिन भगवान ने ऐसे पद्धति बनाई है कि जब तक हम उनके प्रतिनिधियों के दिव्य गुलाम नहीं बनते तब तक हम वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। अगर वास्तव में हमें मुक्त होना है तो फिर हमें गुलाम बनना है। किसके गुलाम बनना है ये हमें जानना चाहिए। लोग संसार का गुलाम बनते हैं, संसारी चीजों का, संसारी व्यक्तियों का गुलाम बनते हैं और सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, जबकि वो इन तीन गुणों के अधीन हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और अपने आप को मुक्त सोचते हैं। ये माया का खेल है। परंतु जो व्यक्ति सद्गुरु के शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करता है तो वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है। और जो व्यक्ति इस तरह से आज्ञा का पालन नहीं करता, अपराध करता है, तो ये गुरु अपराध तो महान वैष्णव अपराध हो जाता है। इसलिए उसके लिए भक्ति मार्ग में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक वो होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है, वो गुरु क्या चाहते हैं वो जानते हैं और गुरु के बताने के पहले ही वो चीज कर देते हैं। मतलब गुरु को बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये करो वो करो, बताए बगैर कर डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु क्या चाहते हैं और उनकी इतनी बुद्धि होती है कि वो सही तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि गुरु को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ नहीं करते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी का शिष्य कहा जाता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य वो है, वो भी आज्ञाकारी होता है, परंतु उसे खास करके बताने की आवश्यकता होती है कि देखो ये करो वो नहीं करो, और फिर जो स्पष्ट रूप से उसे बताया जाता है करने के लिए या नहीं करने के लिए वो ठीक वैसे ही करेगा, लेकिन अपनी ओर से कुछ सोच विचार करके वो कार्य नहीं करेगा कि गुरु को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस जितना बताया गया है उतना करेगा। और तीसरे श्रेणी का शिष्य वो है जो कि आज्ञा पाने के बाद भी, स्पष्ट आज्ञा पाने के बाद भी उसका पालन नहीं करता है, तो वो शिष्य नहीं कहलाता वास्तव में, क्योंकि शिष्य मतलब वो है जो कि गुरु के शासन का पालन करता है। लेकिन जो गुरु के शासन का पालन नहीं करता, जो अपने आप को हवाले नहीं करना चाहता गुरु के, तो ऐसे शिष्य होने की क्या मतलब है। तो शिष्य को चाहिए, हर भक्त को चाहिए कि वो अच्छी तरह से समझे। प्रभुपाद जी ने कितने सारे आदेश उनकी किताबों में दिए हैं, उनके संस्था में कितने सारे शिष्य हैं अलग अलग गुरुओं के, लेकिन प्रभुपाद ने सबके लिए समान आदेश दिए हैं, हमको कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से उनके आज्ञा का पालन करके हम बड़े प्रेम से आनंद से हम रहकर भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। शिष्य कैसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी मन में आती है। एक बार ऐसे हुआ कि एक साधु थे और उनको कहीं यात्रा में जाना था, काफी वृद्ध थे इसलिए उनको एक घोड़े की आवश्यकता थी, तो घोड़े के ऊपर बैठकर वो चले जा रहे थे। साथ साथ में चलते चलते उनका शिष्य जा रहा था, तो फिर शिष्य को उन्होंने बताया था कि देखो इन चीजों का ख्याल रखना, ये देखना वो देखना ये देखना। तो शिष्य ने अच्छी तरह से इनका ख्याल रखा, अपना लिस्ट बनाया कागज और कागज अपने जेब में रखा। फिर यात्रा आरंभ हो गई और गुरु घोड़े के ऊपर सवार होकर धीरे धीरे चलने लगे। उनके बगल बगल में शिष्य घोड़े की लगाम पकड़कर वो भी चल रहे थे। फिर अचानक गुरु का सामान, एक कोई सामान जो था वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया, तो शिष्य ने अपना लिस्ट देखा और आगे चलता गया। तो गुरु ने कहा कि अरे तुमने उठाया क्यों नहीं, मेरा सामान नीचे गिरा। तो शिष्य ने कहा गुरु महाराज आपके आदेश में नहीं था, आपके आदेश में ये तो ऐसा नहीं था कि आपको जब कपड़ा गिरा वो उठाओ, तो आपका आदेश नहीं था इसलिए मैंने नहीं उठाया। अरे जब भी मेरा कपड़ा गिरे तब उठा लेना, ठीक है। हाँ गुरु महाराज। तो कपड़ा उठाकर रख दिया और आगे चल के उनका एक दूसरा सामान था, उनके जूते थे, वो जूते नीचे गिर गए। तो फिर से शिष्य ने देखा और गुरु ने पूछा अरे मेरा जूता गिर गया, तुमने उठाना क्यों उठाया क्यों नहीं। गुरु महाराज आपने कहा आपके कपड़े गिरे तो उठाओ, लेकिन जूते के बारे में नहीं कहा, इसे मैंने नहीं उठाया। तो फिर बहुत गुस्सा आया गुरु को, अरे गुरु ने कहा कि जो भी गिरे उसको उठाना, ठीक है। तो फिर आगे चलते चलते घोड़े ने क्या किया, घोड़े को प्रकृति का बुलाव आया तो घोड़े ने विश्वास छोड़ दिया। तो फिर शिष्य को याद आया कि जो भी गिरे उसे उठाना, तो वो उठाकर गुरु को देने लगा। तो गुरु कहने लगा अरे ठीक ठीक क्या करिए क्या दे रहे हो मुझे, आपने ही तो कहा था कि जो भी गिरे उठाना। तो इस तरह से कवि शिष्य होते हैं। और फिर आगे चल के बेचारे एक घोड़ा जो है वो तेजी से चला, गुरु ही गिर गए। तो गुरु जब उठे गिर गए वो घोड़े के पीछे भागे, गुरु बोला अरे मेरे को उठाओ घोड़ा जाने दो। फिर वो शिष्य लिस्ट देखने लगा, नहीं गुरु के बारे में तो कुछ कहा नहीं कि गुरु नीचे गिर जाए जमीन पर तो उसको उठाना। तो इस तरह से शिष्य नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो उसने जो भी गुरु ने बताया था वो ही किया था, आज्ञा का पालन किया था, लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए शिष्य को, समझना चाहिए बिना बताए हुए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अपने ही कल्पना से कुछ मनगढ़ंत चीज का निर्माण नहीं, चीज का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति ऐसे श्रद्धा भाव से चलता है, उसे सारा ज्ञान सारी भक्ति भगवान हृदय से ही प्रकाशित कर देते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्यर्ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मानः। जिस व्यक्ति को गुरु शास्त्र में पूर्ण विश्वास है, उसे सारे शास्त्रों का सार जो है वो समझ में आता है। तो अगर किसी ने गुरु की अवज्ञा की है, गुरु अपराध किया है, तो उसको क्या करना होगा, कैसे इस अपराध से मुक्त होना होगा? पहली बात, जैसे कि हम पिछले रविवार को चर्चा कर रहे थे, उसको तीव्र प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि अरे रे मेरे से बहुत गलती हो गई, और फिर क्षमा याचना करनी चाहिए गुरु के सामने जाकर। गुरु बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए वो जल्दी से क्षमा कर देंगे और शिष्य को उनकी सेवा में, भगवान की सेवा में फिर से लगा देंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना है इन सारे अपराधों से, जिनसे कि हमारे भक्ति के राजमार्ग में बहुत सारे कांटे आ सकते हैं। तो ये हुआ तीसरा नाम अपराध, गुरोर अवज्ञा, मतलब गुरु की के आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम, मतलब जितने भी वेद शास्त्र हैं उनकी निंदा करना, खंडन करना उनका, नहीं नहीं ये बिल्कुल बेकार है, गलत है, ये नहीं। वेद वास्तव में क्या है? वेद भगवान की वाणी है, वेद दिव्य ज्ञान है, ये सनातन ज्ञान है, नश्वर नहीं है। किसी साधारण मनुष्य के बुद्धि से, मन से, कल्पना से उत्पन्न हुआ नहीं है, बल्कि स्वतः भगवान नारायण के श्वास से उत्पन्न हुआ है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय मतलब जो किसी साधारण व्यक्ति से उत्पन्न न होकर साक्षात भगवान से उत्पन्न हुआ है। और ये सनातन कैसे है? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो उस समय भगवान नारायण के सांस से ये वेद उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे परंपरा में इसी वेदों के ज्ञान को आगे सिखाते हैं, और ऐसे परंपरा चलती जाती है। जब सृष्टि का नाश होता है, तो उस समय सारे वेद पुनः भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी में निवास कर, विष्णु जी में निवास करते हैं, और फिर पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो फिर से वेद भगवान के सांस से बाहर निकलते हैं। इस तरह से वेद सनातन है। केवल समय समय पर जो महान ऋषि मुनिगण होते हैं, वो इनकी रचना करते हैं, उनका संपादन करते हैं, ताकि मनुष्य समाज तक ये ज्ञान पहुंच सके। जैसे वेद व्यास जी हैं, वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदान की है वेदों का संपादन करने के लिए। व्यास मतलब संपादक। तो अलग 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 वेदों को उन्होंने इकट्ठा करके जो एक वेद था, उसका विभाजन किया चार भागों में, और फिर उनके साथ और कई ग्रंथ थे, इन सब को अलग अलग शिष्यों को उन्होंने सिखाया, और इस तरह से वेदों का ज्ञान परंपरा में आते रहा। तो वेद व्यास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जन साधारण वैसे लोगों की धारणा है कि ये शास्त्र क्या है, ये कोई किसी की कल्पना की बात है, कोई एक व्यक्ति किसी गुफा में बैठकर ये कहानी लिख दिया, दंत कथा, और इसको लोग शास्त्र कहते हैं। लेकिन नहीं, ये तो साक्षात भगवान की वाणी है, कोई दंत कथा या काल्पनिक कथा नहीं है। और जब ऋषि मुनियों ने इनकी रचना की है, तब इनके गुण क्या है, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये आजकल के लेखक कवि की तरह नहीं है, जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं करते हैं, जो विषय भोग में बिल्कुल हमेशा मग्न रहते हैं, ये ऋषि मुनिगण वैसे थे जिन्होंने अपने इंद्रियों पर और अपने मन पर वश किया था, जिनकी बुद्धि शुद्ध और तीव्र थी, जो तपस्वी थे, जिनके अंदर भक्ति भावना थी भगवान के प्रति। ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में रहकर ये सारे वेदों के ग्रंथों की रचना की है। इसलिए इन ग्रंथों की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र में लिखा क्या गया है, केवल भगवान के बारे में ज्ञान दिया है, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के नाम के बारे में इत्यादि। तो जब हम वेदों की या शास्त्रों की निंदा करते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान की निंदा करते हैं, हम भगवान के नाम के, उनके भक्तों की निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इन सब विषयों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र हमारे लिए मूल आधार है, प्रमाण। हम जब कुछ भी कहते हैं तो शास्त्रों का प्रमाण देते हैं कि देखो शास्त्र में ऐसा कहा है, इसलिए हम इसे सत्य मानते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे कि गोबर जो होता है, गाय की विष्ठा है, किसी भी पशु की विष्ठा वो अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन गाय का विष्ठा जो गोबर है वो शुद्ध माना जाता है। इतना शुद्ध माना जाता है कि भगवान के अर्चा विग्रह, उनकी मूर्ति को का अभिषेक किया जाता है गोबर से, गौमूत्र से। किसी अशुद्ध जगह को शुद्ध करने के लिए गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो भी विष्ठा मूत्र इत्यादि होता है वो तामसिक होता है, लेकिन गौमूत्र और गोबर ऐसा नहीं है, वो अशुद्ध चीजों को, जगहों को भी शुद्ध कर सकता है। तो ये शास्त्र में बताया है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं, ब्रह्म वाक्य। कभी कभी जब दो लोगों के बीच में तर्क होता है, एक व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ऐसे ही करना चाहिए, दूसरा कहता नहीं, फिर दूसरा व्यक्ति पहले से कहता है कि अरे क्या तुम ये कह रहे हो ब्रह्म वाक्य है क्या, वेदों के वाक्य है क्या कि हमें पालन करना ही चाहिए। मतलब वेदों के वाक्य वो वाक्य हैं जिनका पालन हमेशा हमें करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है। अभी वेदों के आधार पर जो अन्य ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, जो किताब लिखी हैं, वो भी वेद माने जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे टीकाएं लिखी, तो इनको भी हमें वेद शास्त्र मानने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो सिद्धांत है वही मूल वेदों का सिद्धांत है। वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। वेदों में केवल कृष्ण को प्राप्त करने का उद्देश्य है, वेदों को जानने वाले कृष्ण हैं। हम जब वेदों को पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें। इस तरह से जो भी ग्रंथ प्रामाणिक आचार्यों द्वारा लिखे जाते हैं, जिनमें से वेदों के निष्कर्ष को, वेदों के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, उन शास्त्रों की निंदा भी हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ग्रंथों की निंदा करने से भी इसे नाम अपराध कहा जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों के बारे में निंदा करते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, इनमें ये बताया गया है, उसमें वो बताया गया है, लेकिन ऐसी निंदा करने से हम भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पाएंगे। फिर पांचवा नाम अपराध, लेकिन इसके पहले ये चर्चा करेंगे कि किसी ने अगर ये चौथा नाम अपराध किया हो, श्रुति शास्त्र निंदनम, तो इसका उसे प्रायश्चित होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसने इससे मुक्त होने के लिए? पहली बात, जैसे कि हर नाम अपराध के साथ होता है, बहुत ही उसे पश्चाताप होना चाहिए, अनुताप, कि मैंने शास्त्रों की निंदा की जो कि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की वाणी है, ये बहुत बुरा काम मैंने किया, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा प्रायश्चित, ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जो है ये सारे वेदों का, वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। तो इस श्रीमद् भागवत की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत को दंडवत करना चाहिए, ग्रंथ को, क्योंकि इस ग्रंथ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिर फूल और तुलसी मंजरी, जिनमें की चंदन का लेप लगाया हुआ है, वो हमें अर्पण करना चाहिए तुलसी देवी श्रीमद् भागवतम को। उसके बाद में हमें आरती उतारनी चाहिए श्रीमद् भागवतम की, अगरबत्ती, घी का दीप और फूल अर्पण करके। उसके पहले हमें शानदार भोग चढ़ाना चाहिए श्रीमद् भागवत को, जिसमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट दूध से बने हुए मिठाइयां, व्यंजन इत्यादि, ऐसे सब चीजें शामिल होंगी। फिर आरती करने के बाद हमें नमस्कार करना चाहिए और सुंदर श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, इनका श्रवण करना चाहिए, ये जानते हुए कि केवल ये श्रवण कीर्तन से हम हमारी जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम। पांचवा नाम अपराध, जिसके करने से हमारे भगवान के नाम लेने के प्रयास में बहुत अड़चने आएंगी, वो है अर्थवाद। मतलब भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझना, या तो फिर ये सोचना कि भगवान के नाम के महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा के शास्त्रों में बताया गया है। वास्तव में इतना नहीं है, ये क्या है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इसलिए कहा है कि लोगों को थोड़ी बहुत श्रद्धा निर्माण करने के लिए मन में, ताकि लोग थोड़े बहुत प्रेरित हो जाएं भगवान का नाम लेने के लिए। इसके लिए ऐसे गुणगान किया गया भगवान के नाम का, जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का एक नाम लेने मात्र से हमारे इतने सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, जो कि हम करोड़ों जन्मों में 14 भुवनों ने हम कर नहीं सकते। केवल एक नाम से इतने सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो हम सोचेंगे, अरे ये क्या बढ़ा चढ़ा के कहा है, ऐसे थोड़ी होता है कि एक नाम कृष्ण बोलने से बहुत सारे इतने सारे पाप नष्ट हो गए, जितना कि हम आज तक नहीं कर पाए हैं और भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे पाप एक कृष्ण नाम से नष्ट, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है। केवल लोगों को थोड़ा बहुत आकर्षित करने के लिए कहा है शास्त्रों में, नहीं। अगर हम शुद्ध कृष्ण नाम लेते हैं, समस्या ये है कि हम असली नाम नहीं लेते हैं, हम जो लेते हैं वो बनावटी नाम लेते हैं, नकली नाम। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो हृदय से नहीं लेते हैं, और कुछ सोच रहे होते हैं, या कितनी गलत धारणाएं होती हैं हमारे मन में, इसलिए हमारे मुंह से जो नाम निकलता है वो शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध नाम निकला हमारे मुंह से, तो उसकी शक्ति इतनी अपार है कि वो इतने सारे पापों को नष्ट कर सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य बताते हैं कि हरि नाम जो शुद्ध नाम होता है, वो हमारे मुंह से नहीं आता, वो हमारे हृदय से आता है। मुंह से केवल हरि नाम ले ले, लेकिन उसके हृदय से नहीं आ रहा हो, तो ऐसे नाम का उच्चारण करने से फायदा अवश्य होगा, लेकिन बहुत कम। शुद्ध नाम जब हृदय से लिया जाता है तो उससे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम भी मिल सकता है। लेकिन थोड़े लोग ऐसे श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेना चाहता है, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहता है, उसको शास्त्रों की वाणी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा जितने भी सारे बताई गई हैं शास्त्रों में, उनको पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए कि यह बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। भगवान के नाम को कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं सोच देखना चाहिए। भगवान के नाम की शक्ति अचिंत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान अचिंत्य है। भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर भगवान की अचिंत्य शक्ति है और भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, तो फिर यह स्वाभाविक है कि भगवान के नाम में भी अचिंत्य शक्ति होगी। इसलिए बड़े श्रद्धा से इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसे कई चीजें होते हैं जिनकी अचिंत्य शक्ति होती है, जैसे कि कई भौतिक मंत्र होते हैं जिनसे आप सांप वगैरह जहरीले पशुओं को वश में कर सकते हैं, या ऐसे कोई पत्थर वगैरह होते हैं कीमती जिनसे नाना प्रकार के असर पड़ सकते हैं, आपके अंदर दुर्घटना आनी है वो टाल सकते हैं आप, या बहुत चीजें हो सकती हैं, या ऐसे कोई वनस्पति इत्यादि जड़ी बूटियां होती हैं जिनको लेने से विशेष शक्ति कुछ मिल जाती है, जैसे गौमूत्र है, ये भी अचिंत्य शक्ति है इसमें, क्योंकि गौमूत्र का पान करने से कितने सारे बीमारियां न जाने नष्ट हो जाती हैं। तो अगर इस संसार के वस्तुओं में हम अचिंत्य शक्ति देखते हैं तो फिर भगवान के नाम में क्यों नहीं, जो कि भगवान से पूरी तरह से अभिन्न है। तो जो लोग सोचते हैं, खास करके जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, कि भगवान के नाम की महिमा को जानबूझकर बढ़ाया चढ़ाया गया है, तो ऐसे लोगों का संग करने से हम भी भक्ति मार्ग में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक बार ऐसे हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु गया होकर आए थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो अपने विद्यार्थियों को हमेशा कृष्ण का नाम ही सुनाते थे। हर चीज का विश्लेषण जब करते थे तो उसे कृष्ण नाम तक पहुंचाकर ले आते थे। और एक बार जब वो कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण का नाम कितना महान है, तो उस समय एक ब्राह्मण विद्यार्थी वहां था, वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, हम विश्वास नहीं कर सकते कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, बल्कि ये सब काल्पनिक है, ये तो केवल ऐसे बताया गया है ताकि साधारण लोग भगवान का नाम लें, उनको थोड़ी प्रेरणा मिले। तो चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को कहा कि आज के बाद इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्होंने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को, भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझता है या उसकी महिमा को बढ़ा चढ़ाया हुआ समझता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से ही कपड़ों सहित हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। हाँ, आजकल ऐसे करने जाएंगे तो हमें 24 घंटे में वो नदी में ही रहना होगा, नदी में ही निवास करना होगा हमें पानी के अंदर। आजकल तो अपराधी इतने भरे हुए हैं, जगह जगह जहां जाएंगे वहां अपने अपने मनगढ़ंत ढंग से कोई न कोई टीका टिप्पणी करते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, भले उनको कोई गीता भागवत का ज्ञान हो न हो, बस बोलने में क्या जाता है, लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सड़क में खड़ा हो जाए, पहले रेलवे गेट के पास तिलकवाड़ी में, और बोले देखो अनमोल रत्न, करोड़ों रुपए के रत्न मुफ्त में, जिनको चाहिए आके ले जाओ, कोई आदमी सामने आएगा, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो नकली कुछ होगा, कौन ऐसा आदमी है जो कीमती असली मूल्यवान रत्न ऐसे मुफ्त में बांटेगा, तो लोग संशय की दृष्टि से देखेंगे, कोई जाएगा नहीं उसके पास, सोचेगा ये तो केवल धोखा दे रहा है, मजाक कर रहा है, नहीं जाएंगे। तो वही भावना रहती है हमारे मन में, हमको कोई अच्छी चीज, शक्तिशाली चीज चाहिए, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, सरल चीजों में हमें विश्वास नहीं आता। तो कोई कहेगा कि भगवान का नाम लेने मात्र से आपको इतना कुछ मिल जाएगा, अरे क्या बोल रहे हो, केवल नाम लेने से, हमको तपस्या नहीं करना, हिमालय में नहीं जाना। लोग सोचते हैं कि केवल हिमालय में जाने से, तपस्या करने से, सर पे खड़े होने से, खीलों पे सोने से, ऐसे करने से हमें कुछ लाभ होगा, लेकिन कलयुग में भगवान ने हमारे ऊपर असीम कृपा की है कि केवल उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से हम जीवन की संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा विश्वास हमें इसमें होना चाहिए। इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा स्मरण आती है। हरिदास ठाकुर का नाम तो आप सबने सुना है, वो नामाचार्य थे, नाम भगवान का नाम लेने में आचार्य, कैसे भगवान का नाम का उच्चारण किया जाए वो हरिदास ठाकुर से हम सीख सकते हैं। निरंतर हरि नाम लिया करते थे, 300,000 नाम रोज लिया करते थे, 24 घंटे में से 21-22 घंटे वो केवल जप करते थे, बाकी 2-3 घंटों में अपना सारा अन्य कार्य कर लेते थे, खाना पीना सोना जो भी है। तो एक बार ऐसे हुआ कि भ्रमण करते करते हरिवास ठाकुर एक जगह आए गांव में, जहां दो बड़े पुण्यवान लोग रहते थे जिनका नाम था हिरण्य और गोवर्धन। ये दोनों मजुमदार थे, मजुमदार मतलब खजांची, वहां के जो नवाब थे उनके खजांची थे। और गोवर्धन मजुमदार ये किन के पिता थे, किसी को मालूम है? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास जो आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी बने, चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रिय शिष्यों में से एक, षड गोस्वामियों में से एक, जो आगे चल के वृंदावन में बसे। तो ये दोनों बड़े पुण्यवान थे, हमेशा शास्त्रों में रुचि लेते थे, हमेशा सत्संग उनके घर में हुआ करता था। वो साधुओं को बुलाते थे अपने घर में और भक्तों को एकत्र करके फिर कृष्ण कथा किया करते थे। उनके जो पुरोहित थे उनका नाम था बलराम आचार्य, वो भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो हरिदास ठाकुर भ्रमण करते करते उस गांव में आए और बलराम आचार्य ने उनको निवेदन किया कि आप आइए हमारे संग, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के घर में चलिए, वहां पर रोज सत्संग होता है, आपके संग का लाभ हम सबको दीजिए। तो हरिदास ठाकुर वहां पर चल गए और वहां पर जाके सब लोगों ने जब देखा कि हरिदास ठाकुर आए हैं तो सभी ने उनका दंडवत प्रणाम किया। सभी को मालूम पड़ गया था कि हरिदास ठाकुर 3 लाख हैं। सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे और फिर लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि भगवान का नाम का जप करने से क्या लाभ मिलता है। तो एक कोई व्यक्ति बोलने लगा कि भगवान का नाम का जप करने से हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बोलने लगा कि भगवान का नाम का जप करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अलग 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 अपनी अपनी धारणाएं बोल रहे थे। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं, मुक्ति और पापों का क्षय होना ये भगवान के नाम लेने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भगवान का नाम लेने का मुख्य फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति भावना। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, एवं वतः सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि हपत्यतो रोदिति रौति गायति उन्माद मन्दित्यति लोक बाह्यः। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में वास्तव में भगवान के नाम के प्रति बहुत आसक्ति है और जिसने इस बारे में व्रत धारण किया है बड़े दृढ़ता से, तो जब वो भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है? सबसे पहली बात, उसका हृदय पिघल जाता है, जोर जोर से भगवान का नाम प्रेम से पुकारने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है और कभी कभी नृत्य करने लगता है और किसी दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता कि लोग मुझे देखेंगे कि मैं नृत्य कर रहा हूं और वो लोग मेरी निंदा करेंगे तो क्या होगा। नहीं, वो कुछ ऐसे सोचता नहीं है, वो केवल अपने भक्ति भाव में इतना मग्न हो जाता है कि बस उसे और कोई विचार मन में रहता नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि देखो, जो वास्तव में भगवान के नाम को जानता है और भगवान का नाम का उच्चारण करता है उसको सही फल कृष्ण प्रेम का मिलता है। मुक्ति, पाप का नाश होना, ये सब असली फल नहीं है। वास्तव में मुक्ति ये तो केवल नाम के आभास से मिल जाता है, नाम की छाया मात्र आने से, नाम का उदय होने मात्र से मिल जाता है। मुक्ति नामाभास का एक तुच्छ फल है। तो फिर उन्होंने एक श्लोक कहा जिसका अर्थ ये है कि जैसे सूर्योदय के होने से तुरंत उजाला हो जाता है, सारा धुंध इत्यादि नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से भगवान के नाम का उदय हृदय में होने से मुक्ति तुरंत मिल जाती है। तो फिर हरिदास ठाकुर ने वहां उपस्थित जो भी विद्वान थे उनसे कहा कि आप इस श्लोक के ऊपर कोई टीका कीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं हरिदास ठाकुर, आप ही टीका कीजिए, बच्चों को कृपया साथ में रखिए, हैं? तो आप ही कृपया इसके ऊपर टीका कीजिए।
तो फिर हरिदास ठाकुर कहने लगे, ठीक है, जैसे सुबह सुबह सूर्योदय के होने से पहले ही, केवल जब सूर्य का आभास होता है, बस सूर्योदय होने ही वाला है, उसके पहले से सूरज की किरणें थोड़ा बहुत आकाश में आ जाती हैं और अंधकार को नष्ट करती हैं, और जब पूर्ण सूर्योदय हो जाता है तब तो फिर पूर्ण प्रकाश हो जाता है, फिर लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में मग्न हो जाते हैं। लेकिन अंधेरे को नष्ट करने के लिए सूर्योदय की भी आवश्यकता नहीं है, केवल सूरज का थोड़ा उदय होने मात्र से उसकी किरणें जो है वो सब अंधकार को, अशुभ चीजों को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी तरह से जब भगवान का नाम हम लेते हैं, केवल नाम के आभास मात्र से हम देखते हैं कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए अच्छी तरह से कि भगवान का नाम जप करने का सही फल मुक्ति प्राप्त करना या पापों को। जप करने का सही फल मुक्ति प्राप्त करना या पापों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है। उस समय वहां पर एक व्यक्ति उपस्थित थे जो कर वसूली का काम करते थे। उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। दिखने में बड़े सुंदर और बड़े ऊंचे खानदान से जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन काफी घमंड भी था हृदय में। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो तुरंत खड़े हो गए और कहने लगा कि अरे सुनो तो इस भावुक व्यक्ति की बातें, इसका सिद्धांत तो देखो। लाखों लाखों जन्म में कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती, और ये कहता है कि केवल हरि नाम के आभास से किसी को मुक्ति मिल जाती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती से कहा कि अरे आप इस बात में संशय क्यों करते हो, ये तो सारे शास्त्रों का सार है। सारे शास्त्रों का कथन ये है कि केवल नामाभास से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। हालांकि भक्त जो होता है कभी किसी भी तरह की मुक्ति चाहता नहीं है, हालांकि मुक्ति देवियां स्वतः उसके सामने आती हैं हाथ जोड़ करके मुझे स्वीकार कीजिए, लेकिन भगवान का भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, वो केवल भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है। तो जब गोपाल चक्रवर्ती ने ये सुना उसको और बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि अगर केवल भगवान के नाम के आभास से मुक्ति वास्तव में मिलती हो, अगर नहीं मिलती हो तो मैं आपका नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, अगर भगवान के नाम के आभास से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती हो तो मैं मेरा ही नाक काट दूंगा। उस समय सारी सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो भी वहां अन्य लोग थे बड़े श्रद्धालु भक्त थे, वो हरिदास ठाकुर को बहुत मानते थे, केवल ये गोपाल चक्रवर्ती था जो बड़ा घमंडी था। तो बलराम आचार्य जो कि गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार के पुरोहित थे, वो उठे और बोलने लगे कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम तो केवल एक तार्किक हो, तुमको क्या मालूम भक्ति के बारे में, क्यों उल्टी सुलटी बातें करते हो। और गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार दोनों ने उसी क्षण से उस गोपाल चक्रवर्ती को उनकी सेवा से निकाल दिया, कहा कि आज से तुम्हारा कर वसूली का काम बंद, तो तुम्हें नौकरी से हम निकाल दे रहे हैं, जाओ यहां से, क्योंकि तुमने इतना भयंकर अपराध किया है, इसका फल तुम्हारे लिए बहुत अशुभ होने वाला है। हरिदास ठाकुर ने ज्यादा गंभीरता से इस बात को नहीं लिया। हरिदास ठाकुर कहने लगे, कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर गुस्सा नहीं होइए, क्योंकि भगवान का नाम केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जो तार्किक लोग होते हैं, जो बहुत न्याय वगैरह में रुचि लेते हैं, वो लोग तो भगवान के नाम को नहीं समझ सकते, इसलिए इस व्यक्ति का कसूर भी नहीं है, इसको क्षमा कर दीजिए। तीन दिन बाद सबको आश्चर्य हुआ ये देखकर कि गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया और उसका नाक पिघल के गिर गया, और बहुत सुंदर रूप था उसका, लेकिन अभी कुरूप हो गया, और उसके जो हाथों में या पैरों में जो उंगलियां हैं, जो कि चंपक के कलियां, स्वर्ण रंग के चंपक के कलियों के समान सुंदर थे, वो भी पिघल के गिर गए। और सभी को ये प्रभाव देखकर हरिदास ठाकुर का आश्चर्य हुआ। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने ये बात को सुना, उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे रे, ये क्या हो गया, देखो इस व्यक्ति ने हरिनाम के प्रति अपराध किया, तो क्या असर हुआ उसके ऊपर। तो इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त रसभाव अज्ञा दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे। कि भक्त का स्वभाव उसको गंभीरता से स्वीकार नहीं करता, जैसे हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की निंदा बिल्कुल गंभीरता से स्वीकार नहीं की। ये भक्त का स्वभाव होता है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव ऐसे नहीं है। जब वो देखते हैं कि भक्त के प्रति अपराध होता है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने हरिदास ठाकुर कृष्ण भगवान ने गोपाल चक्रवर्ती को इतना बड़ा दंड दे दिया। इस तरह से हमें भी जानना चाहिए कि भगवान के नाम की महिमा ये काल्पनिक नहीं है, बढ़ाई चढ़ाई हुई नहीं है, ये सत्य है। केवल श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अगर हमने नाम को ऐसे स्वीकार किया भक्तों के संग में, तो बहुत ही जल्द कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति ने ये पांचवा नाम अपराध किया, अर्थवाद मतलब भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझना, तो उससे उसका प्रायश्चित कैसे कर सकता है। पहले तो बहुत पश्चाताप करना चाहिए, फिर किसी वैष्णव के पास जाकर दंडवत करके क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसे श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, खास करके नाम तत्व के बारे में, श्री कृष्ण का नाम क्या है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जो वैष्णव होते हैं बड़े दयालु होते हैं, उसको प्रेम से आलिंगन करेंगे और उसे क्षमा कर देंगे, और इस तरह से वो इस पांचवें नाम अपराध से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो और पांच नाम अपराध हैं जिनके बारे में हरेक व्यक्ति को जानना चाहिए, उनके बारे में हम अगले रविवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी?
तो श्रृंगार रूप होता है, यानी कि उनका जो वैभव होता है, जो हम जब दूसरे व्यक्तियों में देखते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि भगवान के हम इतना आकर्षित होते हैं उनके श्रृंगार से, उनके रूप से, और वही सादा आदमी में भी, साधारण मनुष्य में भी वो दिखाई क्यों देता है हमें?
अगर व्यक्ति नदी के तट पे खड़ा हो जाए, प्रतिबिंब भी सुंदर दिखेगा, दिखेगा ना? अगर व्यक्ति सुंदर है तो प्रतिबिंब में भी एक सुंदर व्यक्ति दिखेगा, लेकिन वो आखिर में क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक उसी तरह से ये संसार में जो भी हम सौंदर्य देखते हैं, वो सब भगवान के मूल सौंदर्य का प्रतिबिंब है। असली सौंदर्य तो भगवान का है। जब हर चीज को हम भगवान से जोड़ लेते हैं, तो फिर हर चीज हमें सुंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम चीज को भगवान से अलग करते हैं, तो हर चीज बड़ा कुरूप हो जाता है, भले वो कितना सुंदर भौतिक दृष्टि से क्यों न हो। ठीक है,
और लिखे गए हैं, और इनमें क्या वर्णन है थोड़ा सा संक्षेप में?
जैसे हमने प्रवचन में बताया, शास्त्र जो है वो वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं, संपादन व्यास देव ने किया है। शास्त्र भगवान की वाणी है, लेकिन महान ऋषि मुनि भक्त आचार्य ये भगवान की वाणी को शास्त्र रूप में इनकी रचना करते हैं। जैसे व्यास देव हैं, वाल्मीकि जी हैं, ऐसे महान ऋषियों के माध्यम से ये शास्त्रों की रचना हुई है और ये शास्त्र हम तक पहुंची है।